सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं त्रिभुवनशिरसे हरये भवभयगह्वादुनिगदेपणं सिद्धे जीवठाण समलिनगुणचूलियं ओच्छं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब यहाँ छठी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 26 पर हम आए हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है। पहले हमने मूल प्रकृतियाँ देखी, अब उत्तर प्रकृतियाँ देख रहे हैं। उत्तर प्रकृतियों में ज्ञानावरणीय की 5 उत्तर प्रकृतियाँ कही है। आविनिबोधिक ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनपर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। उसमें से अभी अवधि ज्ञानावरणीय की बात चल रही है। तो अवधि ज्ञान पर जो आवरण डालता है, निमित्त की भाषा है ना, तो फिर अवधि ज्ञान क्या है उसके संबंध में यहाँ बात चल रही है अपनी। तो कल हमने अवधि संबंधी वो उसकी डेफिनेशन भी देखी थी। अब 26 पेज पर हम आ गए हैं कि वह अवधि ज्ञान, इसके ऊपर बिंदी पड़ी है, क्या है, मिसप्रिंट हुआ है। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से 3 प्रकार का है। अवधि ज्ञान की जो कैपेसिटी कल हमने देखा था, कितने तक जान सकता है, तो ये तो सबसे कम वाला वो देशावधि है। उसमें भी बहुत सारे भेद है, असंख्यात भेद है। फिर परमावधि ज्ञान और सर्वोत्कृष्ट ऐसा एकमात्र ज्ञान, उसको कहते हैं सर्वावधि ज्ञान, क्योंकि सभी से उत्तम है तो वो एक ही प्रकार का होगा। जैसे जघन्य भी एक प्रकार का होता है और उत्कृष्ट भी एक होगा और बीच वाले सब मध्यम भेद होंगे, वैसे इन तीनों भेदों के स्वरूप का निरूपण आगे करेंगे। अब शंका, अवधि अर्थात मर्यादा सहित होने की अपेक्षा, हम कहते हैं इसका कितना अवधि है, काल है, यानी उसकी मर्यादा कितनी है, तो उसके मर्यादा होने के कारण अवधि ज्ञान का मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों से कोई भेद नहीं है, इसलिए इसका पृथक निरूपण करना निरर्थक है। जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी कोई लिमिटेशंस है, मर्यादा है, तो इसलिए अवधि ज्ञान में भी है, तो आप क्या खास बात कर रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पूछ रहे शिष्य। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। उनमें खास जो अंतर है, मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। अब जिस मति श्रुत की हमने चर्चा की थी, वो तो इंद्रिय संबंधी मति श्रुत ज्ञान की हमने अभी तक चर्चा की। अब यहाँ अवधि ज्ञान की जो बात हो रही है, अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और ये जो मति श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है, किंतु अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए उक्त दोनों ज्ञानों से अवधि ज्ञान के भेद पाया जाता है। शंका, मति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है, जैसे हम प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ना, हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, हमने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना, ऐसा जो कहते ना, तो ये शंकाकार की शंका है, वो तो भी प्रत्यक्ष देखने में आता है मति ज्ञान, तो उसका समाधान करते हैं। नहीं, क्योंकि मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलम्ब नहीं होता, वस्तु को प्रत्यक्ष जाना नहीं जाता है, फिर भी व्यवहार में लौकिक में उसको प्रत्यक्ष कहने में आता है, उसको कहते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। परंतु वो है कौन सा ज्ञान, परोक्ष ज्ञान का ही भेद है। तो यहाँ क्या समझाते देखते, मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलम्ब नहीं होता, मति ज्ञान से जो प्रत्यक्ष जाना जाता है वह वस्तु का एक देश है, पार्ट है उसका, और वस्तु का एक देश संपूर्ण वस्तु रूप नहीं हो सकता। जो भी वस्तु है वह मति ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानी जाती है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष मति ज्ञान का विषय है। क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष। परोक्ष किसको कहना? जो अप्रत्यक्ष है वो परोक्ष मति ज्ञान का विषय है। इसलिए यह सिद्ध, हाँ, वस्तु का एक देश यानी पार्ट। मति ज्ञान से हम पूरी वस्तु जैसे केवल यानी प्रत्यक्ष जानते हैं, वैसी तो हम नहीं जानते, उसमें से कुछ कुछ जानते हैं। अभी ये जो एक वस्तु है, तो इसमें आप परमाणु को नहीं जान रहे, स्थूल मोटी मोटे तौर पर जो कुछ बात है उसको जान रहे, है ना? इसको कहना। हाँ,
देखो, पहले तो आपका प्रश्न है कि एक देश यानी क्या? जो संपूर्ण वस्तु है उसमें से कुछ आप जाने, पार्ट ऑफ इट एंड नॉट फुल्ली। जैसे हमने ये आपको पेंसिल दिखाई, तो आप पेंसिल को देखते हैं, जान रहे हैं, तो जो उंगली के पीछे वो भाग आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां है पर अप्रत्यक्ष है। यहाँ की भाग, यहाँ का भाग दिखता है, इधर का नहीं दिखता है, ख्याल में? तो वो तो एक साइड का थोड़ी है, लेकिन केवली के ज्ञान में तो सब ही आएगा। जैसा आपने अभी बताया, इसमें कितने परमाणु हैं, क्या है, उनके स्पर्श रस गंध वर्ण, उनके अविभाग प्रतिच्छेद, ये हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वस्तु में है ना, तो हम एक देश जानते हैं, पार्ट ऑफ इट। हाँ, प्रत्यक्ष जाना जाता है, हाँ, मर्यादा पूर्वक। अवधि ज्ञान में भी जाना जाता है सिर्फ रूपी पदार्थों के बारे में, हाँ, और वह भी मर्यादा पूर्वक। वो तो हाँ, उसमें भी अंतर है, बिल्कुल है। आपका पूछना है कि अवधि ज्ञान में जो प्रत्यक्ष जानता है उसको, उसको भी एक देश प्रत्यक्ष कहा है, विकल प्रत्यक्ष कहा है, सकल प्रत्यक्ष नहीं कहा है। हाँ, वो भी, उनके भी एक परमाणु के बारे में जानेंगे, और उनका भी समझ लीजिए कि केवली जितना तो नहीं जानेंगे, क्योंकि काल की मर्यादा है ना, केवली तो तीन काल के पर्याय को जानेंगे। जैसे जैसे उसके डिटेल्स आएंगे, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। आप जा फास्ट थिंक करते अच्छे हैं।
इसलिए सिद्ध हुआ कि मति ज्ञान प्रत्यक्ष रूप के रूप से वस्तु का जानने वाला नहीं है, उसी का विशेषार्थ दोबारा बता रहे हैं। देखो, यहाँ पर जो मति ज्ञान को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षात्मक परोक्ष कहा है, यानी प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्षात्मक परोक्ष, उसका अभिप्राय यह है कि इंद्रियों के द्वारा वस्तु का जितना अंश स्पष्ट रूप से जाना जाता है, उतने अंश में वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, और अवशिष्ट, अवशिष्ट है ने रिमेनिंग, शेष जितना अंश नहीं जाना जाता है, उसकी अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वही अप्रत्यक्ष है, जितना जानता है उतना तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? तो स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जितना जानता है वो तो कुछ, तो थोड़ी ही मात्रा में स्पष्टता है, बाकी तो अस्पष्टता बहुत है, तो अप्रत्यक्ष ज्यादा है, उसकी अपेक्षा वही ज्ञान अप्रत्यक्ष है। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शब्दों का प्रयोग लोक व्यवहार की अपेक्षा किया गया है। जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है और इंद्रिय ज्ञान परोक्ष कहलाता है, उसकी अपेक्षा नहीं। यहाँ जो प्रत्यक्ष कहा, जो हमने कहे थे ना, हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, वो वाला, यानी लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष परोक्ष की बात चल रही। किंतु आगम में, यानी अपने शास्त्र में, मति ज्ञान को परोक्ष ही माना है, क्योंकि वहां इंद्रियों का निमित्त बनता है और आत्मा स्वयं को जानता है, यह केवल ज्ञान है। उस कितने इंद्रियों के द्वारा जानता है? हाँ, नहीं, इंद्रिय मन से पार है वो, आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट, यानी बिना किसी निमित्त के, ना वहाँ प्रकाश की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, ना अन्य कुछ की आवश्यकता है। ना ही वो पदार्थ सामने चाहिए, ना ही वो विशिष्ट मर्यादा में स्थित होने चाहिए। सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित काल से भी जो अनंत काल पश्चात या पूर्व वाली बातों भी एक साथ एक समय में स्पष्ट जानते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान में एक देश प्रत्यक्षता है, वो भी काल की मर्यादा से पहले का, पश्चात का, यहाँ का या अन्य कहीं का वो जान लेते हैं। और वहाँ भी इंद्रिया या मन के द्वारा नहीं जानते अवधि ज्ञानी, वो भी आत्म प्रदेशों के द्वारा ही। वैसे तो जानना तो आत्म प्रदेशों से ही होता है, परंतु बीच में ये निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ निमित्त के कारण वहाँ वो परालंबी जो पराधीनता है उतनी उसमें नहीं होती, वो प्रत्यक्ष का लक्षण है। इसलिए अवधि और मनपरे को एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं और केवल ज्ञान को पूर्ण प्रत्यक्ष कहते हैं। और उसकी अपेक्षा भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये कौन सा वाला? इंद्रिय वाला ही समझना, इंद्रिय मन वाला, वो तो परोक्ष ही लगाएंगे वहाँ। फिर भी लोक व्यवहार में जैसे हमने, अरे हमने अपने आँखों से देखा, उसको प्रत्यक्ष कहने में आता है। इतनी ही बात यहाँ पर है। किंतु आगम में मति ज्ञान को परोक्ष ही माना, इन दोनों अपेक्षाओं से यहाँ पर मति ज्ञान को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप परोक्ष कहा गया है। ये इसमें अपना कंफ्यूजन नहीं हुआ इसलिए फिर दोबारा विशेषार्थ में बताया। अब शंका, यदि ऐसा है, बीच में तो शब्द चाहिए ना, यदि ऐसा है अवधि ज्ञान के भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, यदि ऐसा है तो डालो बीच में। यदि ऐसा है तो अवधि ज्ञान के भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है, क्योंकि वस्तु त्रिकाल गोचर अनंत पर्यायों से उपचित है। इसका अर्थ क्या है? वस्तु यानी द्रव्य त्रिकाल गोचर यानी जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में वर्तने वाले, ऐसे अनंत पर्यायों से उपचित है, अनेक पर्यायों से बनी हुई है। द्रव्य किसे कहना? अनादि अनंत पर्यायों के समूह को हम द्रव्य कह सकते हैं, क्योंकि द्रव्य तो एक एक अवस्था में ही, द्रव्य जब कोई उपस्थित है तो अपनी अपनी अवस्था में उपस्थित है। अभी वर्तमान में सभी द्रव्य अपने अपने वर्तमान पर्याय में मौजूद है, तो हर समय कोई ना कोई उसकी अवस्थाएं चलेगी। तो अनादि से लेकर अनंत काल की जो अवस्थाएं हैं वो तो द्रव्य को ही बताने वाली है। इसलिए यहाँ कहा अनंत पर्यायों से उपचित है, किंतु ये शंकाकार की शंका चल रही है। अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष द्वारा उस प्रकार की वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है, यानी जो अवधि ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है तो वस्तु के अनादि अनंत पर्यायों को तो नहीं जानता है अवधि ज्ञान। उसका समाधान नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का, क्या कहा? अवधि ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान समस्त पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान पाया जाता है, तथा भूत और भावी असंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान देखा जाता है। क्या कहते हैं? वहां अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर भी उसको एक देश प्रत्यक्ष कहा। वर्तमान की पर्यायों को जानता है और भूत भविष्य की असंख्यात पर्यायों तक ही लिमिटेड है, वो अनंत नहीं कहा उसको। काल की अपेक्षा भी जो सर्वावधि वाला भी ज्ञान है वो अनंत काल पहले का और अनंत काल पश्चात का नहीं जानेगा, इसलिए वहां असंख्यात शब्द डाला। तो पूर्व की और भविष्य की असंख्यात पर्यायों को जानता है। पर्यायों के ने असंख्यात पर्याय विशिष्ट वस्तु कहा, असंख्यात पर्यायों से युक्त वस्तु, क्योंकि वो भी द्रव्य को जानेगा और उसकी विशिष्ट पर्यायों से युक्त द्रव्य को जानेगा। ये शब्द ऐसे इसलिए लिखा है। शंका, इस प्रकार मानने पर भी अवधि ज्ञान से पूर्ण वस्तु का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अवधि ज्ञान के प्रत्यक्ष परोक्षात्मक का ता चाहिए, प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्राप्त होती है परोक्षात्मका हो, परोक्षात्मतता मकता। देखिए ये ऊपर की शंका में लिखा है, पहले में ऊपर से सातवीं लाइन में, यदि ऐसा है तो अवधि ज्ञान के भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता, वो मकता चाहिए, मक और आगे ता। प्राप्त होती है नहीं, क्योंकि व्यवहार के योग्य एवं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के समूह रूप वस्तु में अवधि ज्ञान की प्रत्यक्षता पाई जाती है। व्यवहार में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, ये जो किसी आदमी को देखा तो उसकी अभी शरीर और वहाँ भी रूपीपना है ना, वहाँ उस रूपीपना की अपेक्षा उसके कुछ भूत भविष्य की पर्याय को भी जानेंगे, ऐसे वो व्यवहार प्रत्यक्षता भी है उनके। और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय का जो समूह रूप वस्तु है उसका भी ज्ञान उनको प्रत्यक्ष पाया जाता है। अवधि ज्ञान अनंत व्यंजन पर्यायों को नहीं ग्रहण करता है, इसलिए वह वस्तु के एक देश का जानने वाला है, ऐसा भी नहीं जानना चाहिए। ये पूरा पढ़ लो, क्या कहते हैं कि वस्तु के एक देश को जानता है, ऐसा कहा है तो अनंत पर्यायों में से कुछ पर्यायों को जानता है, इसलिए क्या वस्तु का एक देश कहा या एक देश प्रत्यक्ष कहा उसको, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय के योग्य व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा यहाँ वस्तुत्व माना गया है। वस्तु को जानता है वो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से, व्यंजन पर्याय ने अनेक समयों की स्थूल पर्याय, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को भी कहते हैं व्यंजन पर्याय, परंतु जो स्थूल पर्याय है ना, एक तो सूक्ष्म पर्याय ने एक एक समय वाली पर्याय, और बहुत काल तक जब भी चले भी मनुष्य पर्याय कितने, तो 100 साल वाली मनुष्य पर्याय, तो उसको भी व्यंजन पर्याय कहेंगे यहाँ। तो उस अपेक्षा से यहाँ वस्तु मानी गई है। यदि कहा जाए कि मति ज्ञान का भी यही क्रम मान लेंगे, सो नहीं माना जा सकता, क्योंकि मति ज्ञान के वर्तमान, आगे क्या लिखा है पर्याय विशेष वस्तु की जानने की शक्ति का अभाव है, वर्तमान ऊपर क्या लिखा है देखेंगे, वर्तमानाशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु परिच्छेदन सत्तीय अभावादो, वर्तमानाशेष है ना, वर्तमान के अशेष, वर्तमान अशेष है ना, वर्तमान को छोड़कर अन्य पर्याय विशिष्ट वस्तु को जानने का अभाव है। मति ज्ञान क्या करता है, वर्तमान पर्याय विशिष्ट द्रव्य को जानता है। ऊपर क्या लिखा, वर्तमानाशेष पर्याय विशिष्ट यानी वर्तमान अशेष लिखना वहां। फिर भी कल वो मनोज भाई साहब आएंगे तभी हम कन्फर्म करेंगे उनकी पुस्तक में क्या लिखा। हाँ आ गए, नाम लेते ही आ गए। देखो मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव है, तथा मति ज्ञान के प्रत्यक्ष रूप से अर्थ ग्रहण करने के नियम का अभाव है। यानी मति ज्ञान जो अर्थ ग्रहण करता है, पदार्थों को जानता है, वो प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं है, उसका परोक्ष ग्रहण है। इस विषय में यह उपयोगी श्लोक है। कहां से डाला उन्होंने, एक आप तो मीमांसा का श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किया है, नयोपनय कांतानां त्रिकालानां समुच्चय अविभ्राग भाव संबंधो द्रव्यमेकमने कदा, उसका अर्थ लिखा है नीचे, जो नैगमादि नय और उनके भेद प्रभेद रूप उपनयों के विषयभूत त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय है, उसे द्रव्य कहते हैं। देखो द्रव्य किसे कहना, तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न समूह उसको द्रव्य कहा। उसमें दो चार पर्याय निकाल दो तो वो द्रव्य नहीं रहेगा, जिसको कहते हैं काल से खंडित नहीं होना चाहिए द्रव्य। तो ऐसा था ना, न द्रव्य खंडियामि न क्षेत्रे खंडियामि न काले न भावे। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से अखंड वस्तु है। तो अनादि अनंत पर्यायों में से दो चार पर्याय निकाल दो उसमें से, तो वो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा, वो द्रव्य का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा वहां। तो इसलिए क्या कहते, देखो त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय उसे द्रव्य कहते हैं। तो अभिन्न संबंध रूप समुदाय है, तो जो 1, 2, 3, 4 क्रम से पर्याय होगी वो अभिन्न रूप से बंधी हुई है एक दूसरे के साथ। तो क्या बीच वाली कोई पर्याय निकाल कर हम अन्य जगह फिट करेंगे उसको? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो समूह है वो अभिन्न है, जो है वो अनादि अनंत ऐसे ही बना रहेगा। किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती, नहीं तो हम उसको द्रव्य ही नहीं कह सकते। तो ये जो लिखा है त्रिकालवर्ती पर्यायों का अभिन्न संबंध रूप समुदाय द्रव्य कहते हैं। अब ये जो त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह है उसके आगे उसका विशेषण बताया, क्या कि विषयभूत, किसका विषय है वो, ये पर्याय किसका विषय है? तो कहते हैं नयगम आदि नय और उनके भेद प्रभेद रूप जो उपनय, यानी नय और उनके जो भेद, नयों के भेद प्रभेद है उसके द्वारा जो जानने में आते हैं, उसका विषय ने उसके द्वारा जो जानने में आते हैं, ऐसे त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का जो अभिन्न संबंध रूप समुदाय है उसको द्रव्य कहते हैं। वह द्रव्य कथनचित एक रूप और कथनचित अनेक रूप है। ये तो आप्त मीमांसा में जो बातें आई उसका उन्होंने यहाँ उपयोगी श्लोक करके लिखा है। अभी हम 28 पेज पर पहली लाइन पढ़ रहे थे भाई, मनोज भाई, तो उसमें हमें एक, उसमें बीच में प्रिंटिंग हुआ नहीं है, तो मैं लास्ट 2-3 लाइन ना क्योंकि के बाद उसमें भी नहीं आया, तो हमने तो ऊपर पढ़कर ऐसा अर्थ लगाया कि मति ज्ञान के वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु, क्योंकि ऊपर लिखा है ना तस्स वर्तमान अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु परिच्छयन सत्ये अभावात्, यानी वर्तमान को छोड़कर अशेष ने अन्य, यहाँ अन्य भी लिख सकते हैं, अशेष अशेष बराबर बैठते, अशेष पर्याय विशिष्ट वस्तु के जानने की शक्ति का अभाव।
हाँ हाँ
आपका ऐसा प्रश्न है, मति ज्ञान भी और श्रुत ज्ञान भी भूत भविष्य की कुछ पर्यायों को जानता है, जैसे कल कौन सा, अभी आज कौन वार है, शुक्रवार, तो कल शनिवार होगा, या अभी हम अमेरिका जाने वाले हैं, या हमने इतनी इतनी बातें गए महीने में हम इतना पढ़े हैं, ये मति ज्ञान भी जान रहे हैं, श्रुत ज्ञान भी जान रहे हैं, बराबर ना? ऐसा प्रश्न है। तो जो हम मति ज्ञान से जो भूतकाल को जान रहे हैं वो स्मृति में आता है, स्मृति नाम का मति ज्ञान है, और जो भविष्य संबंधी कुछ जान रहे वो अनुमान ज्ञान है, क्योंकि ये उसमें भी आते ना, वो तो गणित वगैरह के द्वारा हम ग्रहण कभी है, ये क्या क्या अवस्थाएं बनने वाली है ग्रहों की वगैरह, ये तो सब जान लेते हैं पहले, तो वो मति श्रुत ज्ञान के अंदर आता है। अब अवधि ज्ञान, कोई सामने व्यक्ति बैठे है तो उसके चार भव पहले भी वो कौन सा भव में था, उसकी क्या क्या बातें थी, वो कैसा मरण हुआ उसका, या आगामी भव में वो किस तरह से क्या बनने वाला है, ये बातें उनके ज्ञान में आती है, क्योंकि उन्होंने तो उसको जाना नहीं है उस संबंधी कुछ, ये तो डायरेक्ट उसको जाना उन्होंने। हम जो भी अनुमान के द्वारा या स्मृति के द्वारा जान रहे हैं, अनुमान से बहुत सारी बातें, अभी ये बच्चा बहुत पढ़ रहा है, अच्छा मार्क्स उसने अभी तक है तो ये मेरिट में आने वाला है, ये हम अनुमान से बता सकते हैं, परंतु प्रत्यक्ष ज्ञानी कैसा बताएगा, नहीं ये बीमार पड़ेगा कुछ तो, अभी जो कुछ कारण बनेगा वो कारण को भी जानेगा, अरे परीक्षा में ही नहीं बैठेगा, ये तो फर्स्ट आ ही नहीं सकता, यानी ये तो उसका कौन सा नंबर आया, कब बैठने वाला, वो सब वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो सकता। और ये जो श्रुत ज्ञान के द्वारा निमित्त ज्ञान भी ऐसे होते ना, अवधि ज्ञान का भी ऐसा कुछ होता है। अभी अवधि ज्ञानी ऐसा जानेगा कि कर्मों के जो अवस्था है उसको जानकर भी कि इसकी आयु इतनी है, ये 7 दिन में मरने वाले वगैरह हम देखते हैं, हमारे प्रथमानुयोग पूरे अवधि ज्ञानी मुनियों के कथन से भरे हुए हैं, वो बताते हैं कि इसकी आयु अभी इतनी शेष है, तो उन्होंने वो जानकर बताया कि नहीं। फिर भी उसमें भी और एक है, ये जो कदली घात वगैरह बातें वो ऐसे नहीं जानेंगे, अभी वो सर्वावधि की बात छोड़ दीजिए, परंतु अभी किसी वर्तमान जीव ने अभी आयु का बंध नहीं किया तो उसके पास आयु 1 करोड़ पूर्व की पड़ी हुई है, लगभग 1 करोड़ पूर्व की, और अभी कालांतर के बाद उसमें कदली घात होगा, अभी वो तो सबके ज्ञान का विषय नहीं होगा, उसकी अपेक्षा उसके समझो मान लेते हम अभी 100 साल की बात करेंगे, 100 साल की आयु उसके अंदर पड़ी है, मगर वो तो जो पावरफुल अवधि ज्ञानी वाला है या जो फिर केवल ज्ञानी वाला है उसके ज्ञान में कैसे, नहीं ये इसकी 4 साल के पश्चात ये कदली घात से अमुक कारण से, वो निमित्त वगैरह सब उनके ज्ञान में है ना, अरे अरे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा बच जाता, ऐसा हमको लगता है ना, अरे काहे को गया मरने को, वो प्लेन का एक्सीडेंट होने वाला था तो, और जो बचने वाला होता तो हम देखते हैं आइन मौके पर वो टिकट किसी को देता है तो उसकी दया आकर वो तो वो बच जाता है, तो अच्छा हुआ हम बच गए, ऐसे वैसे ही होने वाला है, ये तो केवल ज्ञान ही वो प्रत्यक्ष जानेगा, यानी हमें तो निमित्तों की कुछ, अरे ऐसा हुआ ये हम बच सकता था, ये जो हमको विचार आता है, तो यदि हम इस निमित्त के अलावा दूसरे किसी निमित्त की ओर उसका आश्रय करते वो हमको मिलता तो हमारी ये पोजिशन नहीं होती ऐसा लगता है, ये कहाँ पर हमारे सारे, क्योंकि निमित्तों से ही होता है ऐसे, ये सब उसमें मान्यता पड़ी अंदर, अपना यहाँ विषय तो अवधि ज्ञान संबंधी चल रहा है, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी एक देश प्रत्यक्ष कहा उसकी कुछ अवस्थाओं के कुछ काल पहले कुछ काल पश्चात तक के बातें जानते हैं। देखो अब ये तो अपना विषय तो कर्म का चल रहा है तो पहले अवधि ज्ञान क्या है बताया, इस प्रकार के अवधि ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है, अभी ये जो ज्ञान के भेद जो डिटेल में वो आगे आएंगे कभी तो इस प्रकार के अवधि ज्ञान का आवरण करने वाला जो कर्म है उसे अवधि ज्ञानावरणीय कहते हैं। यहाँ तो अवधि ज्ञानावरणीय की बात हुई, अब मनःपरे ज्ञानावरणीय की बात करेंगे, उसके पहले मनःपरे ज्ञान की बात क्या है उसको बताते हैं। दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थ मन कहलाता है, ये मनःपरे ज्ञानी किसको जानता है, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, सामने वाला व्यक्ति कौन से पदार्थ संबंधी विचार कर रहा है यानी उसमें भी रूपी पदार्थ, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ उसको जान लेते हैं, उसको मनःपरे ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ मन किसको कहा, उस पदार्थ को भी मन कह लिए, दूसरे के मन में जिस संबंधी पदार्थ संबंधी वो विचार कर रहा है उसको भी मन, मन के द्वारा विचार करता है तो उस पदार्थ को भी वह मन कहा, उसकी पर्यायों अर्थात विशेषों को मनः पर्याय कहते हैं, उनको जो ज्ञान जानता है वह मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है, और अपने मन की बात जानता है उसको क्या कहते हैं, बोलो अश्विन भाई। हाँ यहाँ क्या लिखा, दूसरे व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थों को जानता है वो मनःपरी है, और अपने मती क्या इंद्रिय और मन के द्वारा जिसको जानते हैं उसको तो हम मती ज्ञान कहते हैं, ये मनःपरी कहले, वह मनःपरी ज्ञान रुजुमती और विपुल मती के भेद से 2 प्रकार है। रुजु का अर्थ होता है सरल, हमने वो रुजु गति भी देखी थी ना, एक सीधे मार एक ही समय में सीधा गमन करके अन्य भव में जाता है उसको रुजु गति कहते हैं। उसमें रुजुमति मनःपरे ज्ञान मन में चिंतन किए गए पदार्थ को ही जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं। क्या है, अभी जो चिंतन चल रहा है मन, जिसका चिंतन चल रहा है या किया है उसको जानेंगे, जिसने मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया ऐसे पदार्थ को नहीं जानेंगे। चिंतित पदार्थ को भी जानता हुआ सरल रूप से चिंतित पदार्थ को ही जानता है, वक्र रूप से चिंतित पदार्थ को नहीं। हम कहते ना ये टेढ़ा मन वाला है, विपुल मति उसको जानेगा, ये रुजुमति उसको नहीं जानता। ये बात हो रही है, रुजुमति वाले सरल मन वाले जीवों के मन में जो सरलता से विचार चल रहे हैं उसको जानेंगे, वो भी चिंतित पदार्थ को जानेंगे, अचिंतित पदार्थ को नहीं जानेंगे। किंतु अभी इसके अगेंस्ट विपुल मति की बात करें, विपुल मति ज़्यादा पावरफुल है ज्ञान, तो विपुल मति मन परे ज्ञान चिंतित अचिंतित पदार्थ को भी। अभी ऐसे रुजुमति वालों ने इस व्यक्ति ने 10 साल पूर्व क्या चिंतन ने उसके विचार क्या थे उसको भी जान लिया, मतलब अभी जो चिंतित नहीं है ऐसे पदार्थ को नहीं जाना। विपुल मति अगले भाव में यह कौन सा विचार करेगा विशिष्ट काल में, ये भी उनके ज्ञान का विषय है। तो अचिंतित पदार्थ को भी तथा वक्रचिंतित और अवक्रचिंतित पदार्थ को भी जानता है। अभी हम पंचम काल के जीव है वो स्पेशलिस्ट है ना वक्रमन वाले, अवक्र चिंतित पदार्थ को भी जानता है।
ये वक्रमन यानी क्या, यानी कभी किसी को ऐसा उपदेश दिया जाए कि अरे तू अपने स्वरूप में एकाग्र होकर अपना कल्याण कर ले, ये बता रहे ना तो इसका कोई ना कोई इसमें फायदा होना ही चाहिए, नहीं तो काय को बताएगा। ये सीधा मन नहीं है, वक्र मन है, ख्याल में। यानी हम देखते हैं ना कि ये आदमी मुझसे कुछ काम करा रहा है या करवा रहा है, इसमें इसका कुछ ना कुछ फायदा ही होना चाहिए, नहीं तो वो क्यों करेगा। ये पंचम काल में ऐसे ही जीव अधिक है वक्र मन के, उनको भी वो विपुल मति जाने ऐसा कह रहे हैं।
ये पंच कल्याणकों में आदि वो बहुत से पंडित आते हैं उपदेश देते हैं और चले जाते हैं, नहीं नहीं इनका इसमें कुछ होगा, एक एक साल में इतने पंच कल्याणक करते हैं इनका कितना कमीशन होगा इसमें, ऐसा विचार करने हमको पूछने वाले भी लोग मिलते हैं हमको। तो नहीं उसको वक्र नहीं कहेंगे, मन में जो चिंतित पदार्थ है ये टेढ़ापन से जो चिंतन चलता है उसकी बात है।
आपका कहना है कि मन वचन काया क्या टेढ़ापन है, वह तो पौद्गलिक है, या मन में चिंतित बात के वो ज्ञान की बात है।
हाँ, मन परे ज्ञान मुनियों को ही होता है। अवधि ज्ञान कहाँ से? चौथे से, क्योंकि उसके पहले उसको हम विभंग ज्ञान कहते हैं मिथ्या दृष्टि वाले को, तो चौथे से अवधि ज्ञान है। टेढ़ापन यानी वो छल कपट वाला जैसे कुछ विचार हो गए। हम कहते हैं हाँ भाव की वजह से टेढ़ापन, विचार तो विचार था, विचार तो विचार है। हाँ
देखो आपका ऐसा कहना है कि कोई कहता है कि भाई इसका इसमें कुछ फायदा होगा, इसमें टेढ़ापन क्या है। हाँ देखो अब अगर आपको पहले प्रथमान युग की बातें ख्याल होगी तो पहले तो ऐसा था, एक जमाना ऐसा था कि हाँ ऐसा कहते थे तो चुपचाप बैठा था, कोई खोटा काम नहीं, माँ यानी मत कर तो वो नहीं करता था। फिर उसके बाद दिक, हाँ यानी धिक्कार है तेरा, अभी तुम धिक्कार करो कुछ भी करो हम तो रस्ते पे थूकेंगे ही, रस्ते पे और गंदा गंदा कुछ भी करेंगे, ये क्या है कैसे टेंडेंसी। अभी वो तो मन ही सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को घर नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को मैं क्या करूँ, मेरे को भी मैं आदमी हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ऐसा करके वो जो कार्य कर रहा है
ये कुटिलता जिसको कहते हैं ना मन की कुटिलता।
अभी देखो मैं कहता हूँ पॉकेट मार भी होते हैं, वो पॉकेट मारते हैं पैसा निकाल लेते हैं, आपका एड्रेस होगा तो आपके एड्रेस पे बाकी कागज वागज वो सब भेज देते हैं, तो और कोई उधर ही रास्ते में फेंक देवे, इसमें डिफरेंस है ना मन में। जैसा खोटा मन कहो या वक्र मन कहो, वक्र यानी ऐसा कोई एंगल थोड़ी होगा उसको, ये तो थिंकिंग कैपेसिटी जो है उसकी बात है। इसलिए तो पंचम काल में तो और तो अभी तो अभी हम खाली 2500 वर्ष चालू हो गए, पंचम काल चालू हो गए 2500 वर्ष हो गए, अभी मान लीजिए कि 18000 साल के बाद क्या होगा हो ना क्योंकि हम 150 साल के पहले की बात नहीं जानते, इसलिए हमने को
देखो तो शंका पूछ अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में क्या भेद है, उसका समाधान। मनपरे ज्ञान विशिष्ट संयम के निमित्त से उत्पन्न होता है, संयमधारियों को भी होता है, वो भी सभी संयमियों को नहीं, विशिष्ट संयम के साथ। किंतु अवधि ज्ञान भव के निमित्त से, कौन के भव, किस भव के निमित्त से होता है अवधि ज्ञान? देव और नारकी, नारकियों में भी और देवों में भी, वहां तो होता ही है। मिथ्या दृष्टियों को भी वो कु अवधि यानी विभंग ज्ञान रहता ही है, और सम्यक दृष्टियों को भी वहाँ अवधि ज्ञान तो होता है, तो उस भव में तो होता ही, वो भव के निमित्त से होता है अवधि ज्ञान। और गुण अर्थात क्षोभशम के निमित्त से उत्पन्न होता है। तो मनुष्य और तिर्यंचों में क्षोभशम जो है वहाँ अवधि ज्ञानावरण संबंधी जो क्षोभशम चल रहा है उसके निमित्त से वहाँ गुण प्रत्यय कहते हैं। ये भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, ऐसे दो भेद अवधि ज्ञान के हैं, उसके निमित्त से उत्पन्न होता है। देखो देखो आपका प्रश्न है विभंग ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है, बराबर है ना, दोनों की क्या कैपेसिटी अलग है। अभी विभंग ज्ञान वो तो मिथ्या ज्ञान चल रहा है उसका, हाँ मान्यता की अपेक्षा भी, और वो ज्ञान में भी उसका जो जानन रूप चल रहा है वो भी उल्टा ही जानन रूप चल रहा है, मान्यता के साथ है। हाँ अभी उसका जो विभंग ज्ञान क्यों कहा, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान के साथ उसका विभंग ज्ञान कुछ चल रहा है, अभी उसकी कैपेसिटी उसका जो कुछ है उसमें भी अंतर पड़ता है। वैसे भी भव प्रत्यय वाला विभंग ज्ञान है वो तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, पर्याप्त होने के पश्चात वो उत्पन्न होता है। अब कोई देव है और अवधि ज्ञान यानी चौथे गुणस्थान वाले, तो उनके अपर्याप्त अवस्था से अवधि ज्ञान चलता है। अवधि ज्ञान कोई सम्यक दृष्टि यहाँ से गया देव में, तो अपर्याप्त अवस्था से उसको अवधि ज्ञान की उत्पत्ति है, यानी वहाँ चलता ही है उसका अवधि ज्ञान। मनपरे ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, किंतु अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। देखो मति ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को हमने क्या कहा, चक्षु चक्षु दर्शन कुछ है, और श्रुत ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को क्या कहते हैं? हाँ वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, दर्शन के बाद श्रुत ज्ञान नहीं होता, दर्शन के बाद मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होता है। वैसे मनपरीय ज्ञान है वो मति ज्ञान के पश्चात होता है, जैसे श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए हमने दर्शन में कौन कौन से देखे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, अवधि दर्शन के पश्चात अवधि ज्ञान होता है, परंतु मनपरीय ज्ञान मति ज्ञान के पश्चात होता है। ये भी दोनों में डिफरेंस है। अभी सामने कोई व्यक्ति देखा और फिर उसके उपयोग लगाया हुआ, ऐसे होगा ना, खाली मन में सोचते रहेंगे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे थोड़ी है। मुनियों को कहाँ फुर्सत है दूसरों के मन की गंदगी जानने के लिए, क्योंकि रूपी पदार्थ के बारे में क्या सोचता होगा वो। कैपेसिटी हुई तो क्या हुआ, रिद्धि हुई तो क्या हुआ, मनपरे ज्ञानी तो कितना अल्प ऐसे हो गए कि उनमें वो कैपेसिटी है, और वो भी वो उपयोग कब लगाएंगे, जब छठे में है तब, बाकी तो मनपर्याय 7-12 तक है, फिर की उपयोग रूप कब होता है, छठे में होता है, और उनके पास है फिर भी उपयोग थोड़े ही लगाते बैठेंगे। नहीं होता, यही तो बात कह रही, पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान के बाद डायरेक्ट मन परिज्ञान होता है, बीच में दर्शन आता नहीं है। हाँ, मति ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो होगा, और वहां भी वो अचक्ष दर्शन कहा है, अचक्ष दर्शन, फिर मति ज्ञान और फिर मन परिज्ञान। यह उन दोनों में भेद हुए। नहीं, शास्त्र में आता है कहीं अचक्षु दर्शन मन परिज्ञानियों के लिए अवचक्षु, क्योंकि वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके पहले मन का होता होगा उसमें कोई निमित्त, इसलिए अचक्षु दर्शन का उसमें। इस प्रकार के मन परिज्ञान का आवरण करने वाला कर्म मन परिज्ञानावरणीय कहलाता है। ये तो हम कर्म की बात सीख रहे भूल ही जाते, वो तो अब केवल ज्ञान की बात चल रही है। केवल असहाय को कहते हैं, हम असहाय हीन दीन को मानते हैं, वो नहीं, जिसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है वो असहाय है। जो ज्ञान असहाय अर्थात इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, इंदुमेन आलोक यानी क्या, प्रकाश, हाँ बराबर है, वो आलोक नहीं समझना इसको, आलोक कहा है। अभी हिंदी वालों को तो समझ में आएगा, परंतु इसलिए मैंने खास पूछा आपको। इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, हमारे ज्ञान में तो वो सभी अपेक्षाएं, इंद्रिय की अपेक्षा है, प्रकाश की अपेक्षा है, और किस 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 की अपेक्षा है। तो इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, त्रिकाल गोचर है यानी त्रिकाल को जानने वाला, अनंत पर्यायों से समवेत अनंत वस्तुओं का जानने वाला है। कौन सी अनंत पर्याय है, भूत काल अनादि से लेकर अनंत काल तक की, अनंत पर्यायों समवेत उस सहित वाला, ऐसा पूरा ही द्रव्य जानते एक साथ एक समय में अनादि अनंत पर्यायों का समुदाय रूप द्रव्य को जानते हैं। और ऐसे कितने द्रव्यों को जानते हैं, अनंत द्रव्यों, यानी जो सभी अनंत द्रव्य है उन सभी की सभी पर्यायों को एक साथ जानते एक समय में। त्रिकाल गोचर कहा ना, यहाँ लिखा ना देखो, अनंत पर्यायों से समवेत अनंत वस्तुओं का जानने वाला है, असंकुटित अर्थात सर्वव्यापक है, सबको व्यापने वाला, व्यापने वाला यानी जहां वहां जाके फैल जाता है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से सबको जानना ही व्यापकता है उसकी। तो केवल ज्ञान कितना बड़ा है, तो आत्मा के जितने प्रदेश है असंख्यात प्रदेश उतना ही है ना। अभी महावीर भगवान का जो सात हाथ प्रमाण ही होगा, जो उनकी जो देह प्रमाण होगा उनका, फिर भी उसको सर्वव्यापक क्यों कहते हैं। सर्वव्यापक यानी लोक में ही व्यापेगा कि आलोक में भी जाएगा,
सबको जानते
हैं, जानते हैं, मैं कितना व्याप्त है उस अपेक्षा से, उस हाँ लोकालोक दोनों, उस अपेक्षा से लोकालोक संपूर्ण होगा ना, जानने की अपेक्षा से सर्वव्यापक कहा है, तो जानने की अपेक्षा लोक और अलोक दोनों को जान रहा है, यानी पूरे ही आकाश को भी जान रहा है और सभी अन्य समस्त वस्तुओं को। लोक अलोक कहने से उसमें गर्भित सभी वस्तुएं आ गई, लोक में तो सभी आ गए, अन्य पांच द्रव्य और लोक, और फिर आकाश जो रिमेनिंग है वो अलोक, उसको भी जानते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ सर्वव्यापक कहा। परंतु अन्य मति मानते हैं वैसे ईश्वर सब जगह फैला है, यानी उसके प्रदेश सर्वत्र फैले हैं, ऐसा नहीं लेना। अशोक भाई ख्याल में आता है, क्षेत्र की अपेक्षा वो सर्वगत नहीं है, सर्वगत कहो या सर्वव्यापक कहो, वो किस अपेक्षा है, जानने की अपेक्षा, अपने क्षेत्र में रहकर सबको जान लेता है, इसलिए सर्वव्यापक कहा। और असपत्न, सपत्न यानी मालूम है किसको, नहीं देखो देखो, जिसको मराठी में क्या कहते, सवत, सवत यानी एक ही आदमी के दो औरतें हैं, तो उनके आपस में क्या भाव है, प्रतिपक्षी है ना वे, एक दूसरे के साथ उनका झगड़ा चलेगा ना, प्रतिपक्षी है वो, तो सपत्न, तो ए असपत्न, प्रतिपक्षी रहित है। देखो क्या कहते हैं, असपत्न अर्थात प्रतिपक्षी रहित है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं, कोई विरोध ही नहीं उसका। देखो फिर मैं ये तीन लाइन पढ़ती, बहुत अच्छी। हाँ, केवल असहाय को कहते हैं, केवल ज्ञान की बात चल रही है। जो ज्ञान असहाय अर्थात इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा रहित है, अभी उसके क्या क्या विशेषण बताए, पहले तो असहाय कहा उसको। असहाय क्यों कहा? क्योंकि इंद्रिय और आलोक की अपेक्षा नहीं है। फिर त्रिकाल गोचर है, दूसरी बात। त्रिकाल गोचर है ने क्या, अनंत पर्यायों से समवेत अनंत वस्तुओं को जानने वाला है। फिर एक विशेषण लगाया, असंकुटित कहो या सर्वव्यापक कहो। और असपत्न अर्थात प्रतिपक्षी रहित है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। फिर शंका, जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है? उसका समाधान नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से, यानी उसको किसी सहायता की अपेक्षा नहीं होने से, सहायता से निरपेक्ष है, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना, क्या कहते हैं, बाह्य पदार्थों की अपेक्षा नहीं है, वो सामने है तो ही जानेंगे, उनमें वो पर्याय उत्पन्न होगी तो ही जानेंगे, ऐसी अपेक्षा उनमें नहीं है। तो बाह्य पदार्थों की अपेक्षा बिना उनके अर्थात नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के, यानी वो नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों को कैसे जानते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो बाह्य पदार्थों की अपेक्षा बिना इन नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के ज्ञान को उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। ज्ञान की चाहिए क्या, उसमें क्या है? ज्ञान को लिखा है, ज्ञान को ही लिखा है। अच्छा, और केवल ज्ञान के विपर्य ज्ञान पने का भी प्रसंग नहीं आता। विपर्य है ना वहाँ, विपर्य ऊपर क्या लिखा है, विपज्जयनानत्तम विपज्जय नानत्तम। विपर्यय चाहिए ना, यह है बीच में, हाँ विपर्यय चाहिए, विपर्यय ज्ञान। ये सुना है कभी विपर्यय, कहाँ सुना है? हाँ, संशय विपर्यय और अनध्यवसाय, ये जो मिथ्या ज्ञान के वो उनके विशेषण, बुरी दावली उसका स्वरूप, ये विपर्यय ने विपरीत ज्ञान को विपर्यय कहते। तो देखो क्या कहते हैं, केवल ज्ञान के विपर्य ज्ञान पने का भी प्रसंग नहीं है, क्योंकि यानी कोई मानेंगे कि केवल ज्ञान विपरीत पने से जानता है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ स्वरूप से पदार्थों को जानता है, जैसा है जैसी उनकी जो पर्याय अंदर, देखो द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय जानता है केवल ज्ञान, तो विशिष्ट द्रव्य की 10 साल की बात की पर्याय जानेंगे कि नहीं जानेंगे, तो जो होने वाली जानेंगे कि नहीं होने वाली जानेंगे, सभी जानेंगे, यानी वो निश्चित है इसलिए जानेंगे क्या, केवल यानी नहीं जाना इसलिए वहाँ वो पर्याय होगी बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई भी द्रव्य की, अभी ये द्रव्य हम समझो, ये रबर है, इसमें एक परमाणु, हम ये सब मिलकर एक द्रव्य कहेंगे मानने के लिए, अब इसके अनादि अनंत पर्याय निश्चित है कि नहीं है, तो इस विशिष्ट द्रव्य की 10 साल की बात पर्याय केवल ज्ञानी ने अभी जानी है, वो इस द्रव्य में वो पर्याय होने की शक्ति, क्योंकि हमने द्रव्य किसको कहा, अनादि अनंत पर्यायों का जो बिल्कुल बंधन रूप जो समूह है वहाँ, उसको हमने द्रव्य कहा, तो इसकी प्रत्येक पर्याय अपने काल में निश्चित है कि नहीं है, जो निश्चित है उसको केवल ज्ञानी ने जाना है। हम क्या कहते, अरे जैसा केवल ज्ञानी ने जाना वैसा होगा तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? परंतु मैं कौन हूँ, तो ये तो अनादि अनंत पर्याय का समूह, अब वो केवल ज्ञान की विशेषता कि वो हर एक का जान लेते तो हम क्या करें, जो उसमें होने वाली है पर्याय जो निश्चित है उसी को जान रहे, ऐसा जब हम उसको स्वीकार करते, ये केवल ज्ञान का स्वरूप ही नहीं जानते ना, तो ये सब गड़बड़ी चलती है। केवल ज्ञान का स्वरूप जानेंगे, सर्वज्ञता का निश्चय करेंगे, तो अपना द्रव्य सभी पर्याय निश्चित है। अभी क्या करना रहा, थोड़ी अपनी पर्याय बदलेंगे कि दूसरे की बदलेंगे, किसी की नहीं, तो कहाँ देखना रहा। पूरा द्रव्य ही ले लो ना ख्याल में, जो मैं अनादि अनंत पर्यायों का समूह हूँ। अब किसी की चिंता नहीं रहा ना, कुछ करने धरने की बात रहे तो कितनी निराकुलता होगी, परंतु हमें करने धरने में मजा आती है। आप नहीं समझे, उसी को हमने सुख माना है ना। ये इच्छा होती है ना, ये इच्छा ही सब कुछ गलती है। अरिहंतों को भी स्व की करने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं? अरे इतने घाती है उसको तो हटाओ, अघाती है बाकी, घाती तो हटा दिए। देखो जब क्या अल्पज्ञ थे, अल्प वीर्य के धारी थे, है ना, प्रत्यक्ष ज्ञानी तो थे ही नहीं। जैसे क्षोभ ज्ञानी को जैसे हम कंपेयर करते, कोई अंधा है और अंधा है, उसने चार चार शत्रुओं को मार गिराया और जब उसको आंखें आ गई तो कुछ नहीं करे अभी। जैसे चार चार घाती कर्मों को तो उन्होंने नाश कर दिया, कब? बारहवें गुणस्थान में थे, अल्पज्ञानी थे और अल्प वीर्यधारी थे, तब तो चार चार घाती कर्मों का नाश करके अभी अरिहंत हो गए। अरिहंत हुए तो अनंत ज्ञानी भी हो गए और अनंत वीर्य के धारी भी हो गए। अब सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं, तो अब उन चार कर्मों को क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि हमारी मान्यता है ना कि परद्रव्य में ही कुछ करता हूँ, कर्मों को मैं हटाता हूँ, जुटाता हूँ, नष्ट करता हूँ। अश्विन मेरे को बहुत प्रश्न उठते हैं।
आपने अभी कहा कि पर का करने का तो विकल्प अभी नहीं आता है, लेकिन अपनी पर्याय को भी करने का, हाँ, इच्छा होती है। ये बात ध्यान में रखना कि अपनी इच्छा के अनुसार ना पर का परिणमन होता है ना अपना परिणमन होता है, बस इतना ही शॉर्ट में समझ लेना।
इच्छा विभाव है और विभाव करके हम सही
स्वभाव को कैसा प्राप्त करेंगे?
स्वभाव रूप पुरुषार्थ हम विभाव से करना चाहते हैं। ये चाह में ही सब कुछ है, विभाव गड़बड़ी वहीं पर चलती है। अभी विशेषार्थ इसका एक वाक्य रह गया ऊपर, यथार्थ रूप से पदार्थों को जानता है, ये केवल ज्ञानी की बात चल रही। और न गधे के सिंह के साथ वे विचार दोष आता है, क्योंकि वह अत्यंत अभाव रूप है। गधे के सिंह कहने असंभव दोष जैसे हम कहते हैं, ना ही वे संशय वाला ज्ञान है, ना विपर्य वाला है, ना ही असंभव दोष वाला है, क्योंकि वह अत्यंत अभाव रूप है। विशेषार्थ, यहाँ उक्त शंका समाधान में केवल ज्ञान के नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के जानने की शक्ति के संबंध में तीन बातों का स्पष्टीकरण किया है। चूंकि केवल ज्ञान सहाय निरपेक्ष है, अतः वह वस्तु की वर्तमान पर्याय के समान अतीत और अनागत पर्यायों की अपेक्षा नहीं रखता, यानी वो पर्याय विद्यमान होगी तो ही जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। वह स्वभावतः यथार्थ ज्ञायक है। यथार्थ ज्ञायक पना तो यह केवल ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए उसमें विपर्यत्व आने की संभावना नहीं है, बराबर। फिर विपर्यत्व यहाँ बराबर लिखा है, पहले हमने जो करेक्शन किया वो बराबर है, वहां हमने यह डाला था ना पहले पेज पर विपर्यत्व कर। तथा नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का यद्यपि वर्तमान में सद्भाव नहीं है, तथापि उनका अत्यंत अभाव नहीं है। द्रव्य रूप से वे हैं, उन्होंने ब्रैकेट में डाला है प्राग्भाव प्रध्वंसा भाव रूप से वे हैं, वो तो अभाव है, यहाँ भाव रूप से ले
है।
वो द्रव्य में भी गर्भित है, देखो इसलिए कहते वो अत्यंत अभाव नहीं है, अत्यंत अभाव यानी बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर भी वो होकर गए हैं या होने वाले हैं, वे है, और इसलिए अत्यंता भाव चाहिए, अत्यंत भाव किया है। अत्यंता भाव वाले गधे के सिंह के उनका व्यभिचार नहीं आता, जैसे गधे के सिंह है ही नहीं है, वैसा भूत और भविष्य की पर्याय है ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना।
देखिए यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि अभी हमने पहले देखा था द्रव्य क्या है, तो कहते हैं अनादि अनंत पर्यायों का समूह है। वर्तमान में तो एक ही पर्याय प्रकट है, तो भूतकाल की पर्याय कहाँ गई? तो कहते हैं कि वो पर्याय उत्पन्न होती है जिस भी रूप से उत्पन्न हुई, औपाधिक भाव से, औदयिक भाव से या क्षायिक भाव से, वो उत्पन्न होकर दोबारा पारिणामिक भाव रूप स्वभाव में विलीन हो जाती है। और जो भविष्य में आने वाली पर्याय है वह तो द्रव्य में ही है, वो अपने अपने जन्मक्षण के अनुसार उसकी उत्पत्ति होने वाली है। अब यहाँ ये समझाते हैं ये पूर्वकालीन पर्याय यानी अतीत यानी भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय ये द्रव्य में भरी हुई है, ये नहीं समझना कि वो निकल गई कहाँ गई। जैसा हम देखते हैं समुंदर में लहरें आती हैं यानी ज्वार भाटा होता है, मतलब अभी हम समझते हैं कि वो उछालता है पानी, वो जो लहर आती है फिर वापस कहाँ जाती है? वापस समुद्र में मिल जाती है। वैसे ये पर्याय भी उत्पन्न होती है और अपने द्रव्य में समा जाती है, इसलिए यहाँ कहा है कि उनका अत्यंत अभाव नहीं है, वो है वहां पर सद्भावात्मक है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रागभाव और प्रध्वंसार रूप से वे है, ये कहने का प्रयोजन ये है। और गधे को तो सिंह होते ही नहीं, वो तो अभावात्मक ही है, ऐसा है ही नहीं, इसलिए वो अत्यंत अभाव रूप से है। तो यहाँ जो भूतकालीन और वर्तमानकालीन भविष्यकालीन पर्याय है लेकिन वो अत्यंत अभावात्मक नहीं है। कौन सा अभाव है? प्रागभाव और प्रध्वंस अभाव।
देखो अब आगे कहते हैं इस केवल ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को केवल ज्ञानावरणीय कहते हैं। शंका, केवली भगवान में क्या एक ही ज्ञान होता है अथवा पांचों ही ज्ञान होते हैं? क्योंकि वो सभी आवरण निकल गए ना, मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मन परे ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण, सभी आवरण समाप्त हो गए, क्षय हो गया उसका, तो पांचों ही ज्ञान होने चाहिए प्रकट, ऐसा उसका प्रश्न है। प्रथम पक्ष तो माना नहीं जा सकता, ये शंकाकार स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं, यानी एक ज्ञान है कि पांच है तो एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आवरणीय अर्थात आवरण करने योग्य ज्ञानों के अभाव होने से मति ज्ञान आवरण आदि चारों आवरण कर्मों के अभाव का प्रसंग आता है, और न दूसरा पक्ष भी माना जा सकता है, पांच ज्ञान वाला भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, परिमित अपरिमित, असहाय सहाय और क्रम अक्रम रूप पांचों ज्ञानों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध है। क्या कहते हैं? वहां ऐसे कहते हैं कि पहले में तो उसने बोला एक ज्ञान है कि पांच ज्ञान है, तो एक ज्ञान भी नहीं हो सकता क्योंकि सभी वो अन्य भी आवरण सब समाप्त हो गए। फिर प्रश्न करता है पांच ज्ञान होंगे क्या होंगे? परंतु ये पहले जो ज्ञान है वो तो अप्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, उनका तो विषय लिमिटेड है, परिमित है, केवल ज्ञान तो अपरिमित है, केवल ज्ञान असहाय है, बाकी वो सब सहाय वाले हैं, और केवल ज्ञान अक्रम है और बाकी ज्ञान तो क्रम वाले हैं, इसलिए एक साथ ये सभी ज्ञान नहीं रह सकते, दोनों ओर से प्रश्न पूछा है, ऐसा कहो तो ये दोष है और वैसा कहो तो वो दोष है, अब उसका समाधान करेंगे। यहाँ पर उक्त शंका का परिहार करते हैं। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष तो संभव नहीं है। कौन सा दोष? वो पांचों ही ज्ञान एक साथ होते हैं, वो दोष संभव नहीं, क्योंकि वैसा अर्थात पांचों ज्ञानों का एक साथ रहना माना नहीं गया है। और दूसरा यानी अभी पहली बात, और न प्रथम पक्ष में कहा गया दोष भी संभव है। क्या दो वहां उसने कहा था? हाँ, क्योंकि आवरण के वश से उत्पन्न होने वाले मति ज्ञान आदि चारों आवरणीय ज्ञान पाए जाते हैं। क्षीणावरणीय केवल ही भगवान में उनका होना संभव नहीं है। भगवान को क्षीण आवरणीय कहा और बाकी सब आवरण वाले आवरणीय ज्ञान के। मति शुद्ध अवधि और मनपर्याय ये आवरणीय ज्ञान है, ये हमारी भाषा में वो क्षोभम वाले ज्ञान है। और केवली का ज्ञान वो क्षीण आवरणीय ज्ञान, जिनमें आवरण नष्ट हो चुके हैं ऐसा वो क्षायिक ज्ञान है। दूसरी भाषा में ये चार ज्ञान है वो क्षोभम ज्ञान है, जो कर्म का सद्भाव बताता है, आवरण बताता है। और केवल ज्ञान कर्मों का पूर्ण क्षय, ज्ञानावरणीय कर्मों का पूर्ण क्षय बताता है। उनका होना संभव नहीं है क्योंकि आवरण के निमित्त से होने वाले ज्ञानों का आवरणों के अभाव होने पर होना विरुद्ध है। क्षोभम ज्ञान क्षायिक ज्ञान होने पर रहेगा ही नहीं। क्षोभम ज्ञान क्या सूचित करता है? वहां आवरण है। और क्षायिक ज्ञान सूचित करता है वहां एक भी आवरण नहीं है। इसलिए उसके दोनों ही प्रश्नों का निराकरण हो गया। अब दर्शनावरण की बात करेंगे। हाँ देखिए, ये जो क्षोभम ज्ञान है वो क्रम से जानता है, और केवल ज्ञान तीनों काल के अनंतानंत पर्याय और अनंतानंत द्रव्यों को एक साथ एट ए टाइम युगपत जानता है। एक समय में ही वो सब कुछ ज्ञान का विषय है। और क्षोभम ज्ञान में तो आपको जान रहे फिर आपको जाना, ये क्रम पड़ता है। और उसमें दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग का भी क्रम है। उसमें दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान होता है क्षोभम में, और केवल ज्ञान केवल दर्शन अक्रम है, एक साथ दोनों उपयोग चलते हैं उनके। ऐसा भी क्रम अक्रम का वहाँ स्वरूप है। हाँ, केवल ज्ञान एक ज्ञान है। हाँ, परंतु वहाँ वो कहते थे एक ज्ञान को नहीं माना जा सकता क्योंकि वहाँ चारों आवरण कर्मों के अभाव का प्रसंग आता है। ऐसे उलट पुलट कुछ उसके मन में कंफ्यूजन चल रहा है ना। देखो, पांचों ही ज्ञानावरण के क्षय से वहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति है। पूर्ण आवरण रहित ज्ञान है। आप ऐसा कहेंगे केवल ज्ञान तो पूर्ण उघाड़ रूप सबका मिला जुला, ऐसा नहीं है। अभी तो वही बात हो रही है, मिला जुला मानेंगे तो क्रम और एक अक्रम का मिक्सचर हो जाएगा।
देखो, ज्ञान का क्षयोपशम जब कहने में आता है तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ कर्मों का आवरण है कुछ कर्मों का नहीं है, मतलब उपशम भी हुआ है, यानी उनकी विद्यमानता है। ये बात नक्की हो गई ना। क्षयोपशम की हमने परिभाषा देखी थी ना, तो वहाँ कर्म है और केवल ज्ञान कैसा है, उनके कोई भी कर्म नहीं है। अब कोई ज्ञान के आवरण करने वाले किसी भी प्रकार पांच प्रकार में से कोई भी प्रकार वहाँ है ही नहीं। ज्ञानावरणी कर्म का पूरा पूरा नष्टता हुई है, वहाँ विनष्ट हो गए, तो फिर मिला जुला कैसा होगा?
देखो, देखो आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। मुझे कहो अल्प ज्ञान और पूर्ण ज्ञान है, तो पूर्ण ज्ञान है वो अल्प और पूर्ण का मिक्सचर है कि वो पूर्ण ही है?
वो पूर्ण ज्ञान तो मैं क्या पूछ रहा था कि जो पूर्ण ज्ञान को जो हम लोग अविच्छेद ज्ञान में देखते थे तभी उनका चार भेद किया, वो पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो वो एक रूप हो गया।
हाँ,
तो वो ज्ञान तो ज्ञान ही है।
ज्ञान तो ज्ञान ही है। हाँ,
तो
वो वहाँ तो हमने ऐसा भी
तभी वो केवल ज्ञान हो गए
ऐसा नहीं कहते। वहाँ चारों ज्ञान विकसित, चारों ज्ञान कैसे है? अल्प ज्ञान है, यानी वो विकास होते 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 ऐसा नहीं है। विकास होते होते क्या वो मतिश्रुत रूप ही रहे? मतिश्रुत का कितना भी विकास हो तो वो मतिश्रुत रूप से, जब तक आप उस रूप से उसको देख रहे। पूर्ण विकास जब होता है उसको हम केवल ज्ञान ही कहते हैं। अभी उसको मतिश्रुतपना कहाँ रहा? पूर्ण विकसित ज्ञान है ना वो।
पहले में पहले तो मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो दोनों एक कैसा हो सकेंगे? आपका ऐसा मानना हो रहा है कि क्रम से बढ़ते 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 कुछ भी होवे मति श्रुत अवधि ज्ञान ये क्षेपक्षम ज्ञान ही है, मनोपर्याय भी क्षेपक्षम ज्ञान ही है, क्योंकि वहाँ आवरण है अभी और ये तो निरावरणीय है केवल ज्ञान, उसकी जाति तद्दन भिन्न है। ये समझाने के लिए बता देगा भाई उसके ज्ञान के विकास अधिक हो गया वगैरह वगैरह।
अब जो 12 अंगों को जानता है उसको केवल ज्ञान जल्दी होगा ना, और जो एक दो अंगों को पूर्वों को जानता है उसको उसको होगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हा? ख्याल है ना, वो विकास होते होते ऐसी बात नहीं है उसमें। देखो अगला सूत्र भी दर्शनावरणीय समय दंशनावरणीयस्य कम्मस्य नवपयडियो, पयडी यानी प्रकृति, दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियां हैं। यह सूत्र द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर स्थित है क्योंकि उसमें समस्त विशेषों का संग्रह किया गया है। सभी भेदों को गर्भित करके दर्शनावरणीय का ना उसको शंका, संग्रह नय से विशेष कैसे जाना जाता है? आप कहेंगे संग्रह नय से कहना है तो दर्शनावरणीय कहो, तो उसके नौ प्रकृतियां विशेष कर दिया आपने, तो संग्रह नय से विशेष को कैसे जानते हो, ऐसा प्रश्न है। नहीं, क्योंकि बीज बुद्धि वाले शिष्यों के संग्रह नय से विशेष का ज्ञान होने में कोई विरोध नहीं है। मराठी में कहते ता से ताक भात पहचान लेते, कोई एक अल्प एक शब्द कहने से वो पूरा हो जान, उसको कहते बीज बुद्धि। शार्प होते हैं ना तो थोड़ा सा हिंट देने पर पूरा ही समझ लेते, नौ कहते वो सब पूरे भेद जान लेते। अब पर्यायार्थिक नए वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। अब नौ कहते वो जानने वाले कोई शिष्य है, अब जो नौ कहने से भी जिनको पता नहीं चलता उनके लिए वो अलग अलग खोल कर बताएंगे नौ प्रकृतियों के नाम। नौ यानी सब सभी जिसमें गर्भित है, द्रव्यार्थिक नय का आश्रय यानी ये दर्शनावरणी की प्रकृतियां कितनी है तो नौ है। नौ है कहने से कोई समझ लेता है उसके नौ के नौ भेद, परंतु जो भेद नहीं जानता है उसके लिए पर्यायार्थिक नय आश्रय ने पर्यायार्थिक नय का आश्रय करना क्या है, भेद करके समझाना, उसको कहते हैं पर्यायार्थिक, और भेद के बिना द्रव्यार्थिक, इसको द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कहते हैं। अब यहाँ उसके नाम बताएंगे, ऊपर हम पढ़ेंगे सूत्र में, निद्दा निद्दा पयला पयला थीण गिद्धि निद्दा पयलाय चक्षुदंशनावरणीयम अचक्षुदंशनावरणीयम ओही दंशनावरणीयम केवल दंशनावरणीयम छेदी। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान वृद्धि निद्रा और प्रचला तथा चक्षुदर्शनावरणीय अचक्षुदर्शनावरणीय अवधि दर्शनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय, ये नौ दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं, उसके भेद है, पर्यायार्थिक नय का कथन है। सूत्र के ऊपर लिखा ना क्या लिखा देखो पढ़ो। अब पर्यायार्थिक नय वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, ये नाम लेकर नौ प्रकृतियां अलग अलग बताई, ये भेद करके बताया, इसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय का कथन। उसमें अभी ये अलग अलग ये जो नाम बताए हैं उसका अर्थ बताएंगे। उसमें निद्रा निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीव वृक्ष के शिखर पर विषम भूमि पर अथवा जिस किसी प्रदेश पर गुरगुराता हुआ या नहीं गुरगुराता हुआ निर्भर अर्थात गाढ़ निद्रा में सोता है। स्नोरिंग या विदाउट स्नोरिंग गाढ़ निद्रा में सोता है, चाहे जैसे कोई पत्थर पर भी सोया हो या कहीं पर भी, यानी एनी ऑड पोजीशन में या एनी ऑड प्लेस में, तो वृक्ष के शिखर पर भी वो निद्रा विषम भूमि पर, हाँ तीव्र उदय, इसका तीव्र उदय में। अब प्रचला प्रचला की बात करेंगे, प्रचला प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से बैठा या खड़ा हुआ, मुंह से गिरती हुई लार सहित तथा वार वार कंपते हुए शरीर और शिरयुक्त होता हुआ जीव निर्भर सोता है। बैठे बैठे ऐसे मुंडी लटकती है फिर भी सोएगा, हम कहते हैं बस में वगैरह वगैरह। स्त्यान वृद्धि के तीव्र उदय से उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता है। वो तो बताया है, थोड़ा ऐसे विशेषण देके समझाया है, यानी उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि मुंह से लार भी बहती, फिर भी उसको इतना वो निद्रा में है, वो कुछ उसका नॉट अवेयर ऑफ इट। अब स्त्यान वृद्धि के तीव्र उदय से उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है। नींद में जो है ना, उठता है, घूम के राउंड मार के आता है, फिर सो जाता है। कोई कोई जीव दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। कितने घरों में अंदर से लॉक लगाना पड़ता है रात को, ऐसे जिसको नींद में चलने की आदत वगैरह है, ये स्त्यान वृद्धि वाले। तथा सोते हुए भी बड़बड़ाता है, यानी नींद में बड़बड़ाना, अन्य अन्य जो बातें करते हैं, और दांतों को कड़कड़ता है। निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीव अल्पकाल सोता है, उठाए जाने पर जल्दी उठ बैठता है और अल्प शब्द के द्वारा भी सचेत हो जाता है। अब सब अपने अपने बच्चों को हम जगाते हैं नींद में से, तो क्या क्या करते हैं वो पता चलेगा ना। कोई कोई जल्दी थोड़ी आवाज होते ही उठकर बैठते, और कोई कितना भी उनको हिलाव डुलाव तो भी नहीं उठते। प्रचला प्रकृति के तीव्र उदय से लोचन वालुका से भरे हुए के समान हो जाते हैं, जैसे आंखें भारी ऐसे लगते हैं, आंखें नहीं खुलती है, वालुका से भारी हो जाते हैं, जैसे आंख पर कोई वजन रखा है। सिर गुरुभार को उठाए हुए से समान भारी हो जाता है और नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं निमीलन करने लगते हैं। उन्मीलन खोलना और झुकना, ऐसे 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 होते रहता है। निद्रा प्रकृति के उदय से गिरता हुआ जीव,
यहाँ सिर गुरु भार यानी किसी गुरु का भार है, ऐसा नहीं,
गुरु भार
यानी बहुत वजन हेवी, एकदम हम बोलते ना मेरा सिर बहुत भारी हो गया, तो गुरु भार यानी अलग अर्थ मत लेना। हाँ, नहीं नहीं,
हाँ हाँ हाँ, वही अगुरु लघु वाला ही गुरु, वो वाला गुरु, वजन वाला। हाँ, ये प्रचला निद्रा हो गया ना। निद्रा प्रकृति के उदय से गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आप को संभाल लेता है, थोड़ा थोड़ा कंपता रहता है और सावधान सोता है। अब शंका, इन पांचों निद्राओं के दर्शनावरण संज्ञा कैसे है, क्योंकि बाकी तो हम कहते हैं चक्षु दर्शन है तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन तो अचक्षु दर्शनावरण, तो यहाँ निद्रा को दर्शनावरण क्यों कहा, उसका समाधान नहीं, क्योंकि आत्मा के चेतन गुण को अपहरण करने वाले और सर्व दर्शन के विरोधी कर्म के दर्शनावरणत्व के प्रति कोई विरोध नहीं है, यानी वो दर्शन का घात, यानी ऐसा यहाँ तो पूरा घात नहीं है, दर्शन गुण का भी कार्य चलता रहे, परंतु उसके विरोधी जो जागृत अवस्था है, यानी वहाँ हीनता होती है ना ज्ञान दर्शन की, इस अपेक्षा से उसको दर्शनावरण कहा। फिर दर्शन किसे कहते हैं, ज्ञान का उत्पादन करने वाले प्रयत्न से संबद्ध स्वसंवेदन अर्थात आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। इस दर्शन में ज्ञान के उत्पादक प्रयत्न की पराधीनता नहीं है। यदि ऐसा न माना जाए तो प्रयत्न रहित क्षीणावरण और अंतरंग उपयोग वाले केवली के अदर्शनत्व का प्रसंग आता है। यदि ऐसा मानेंगे दर्शन किसे कहना, तो ज्ञान के प्रयत्न को दर्शन कहना। ऐसा यदि हम मानेंगे तो केवल ज्ञान में तो कोई प्रयत्न नहीं है, तो प्रयत्न रहित ज्ञान है, तो उसके उसमें कोई दर्शन होता नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। और अंतरंग उपयोग वाले जो है केवली, उसके अदर्शनत्व का प्रसंग आएगा। तो यह जहां कहां उन्होंने तो स्वसंवेदन को ही लिया, अर्थात आत्म विषय उपयोग को ही दर्शन लिखा है यहाँ, आत्म विषय उपयोग इति अर्थ। अब उनमें चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान के उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से संयुक्त स्वसंवेदन के होने पर मैं रूप देखने में समर्थ हूँ, इस प्रकार की संभावना के हेतु को चक्षु दर्शन कहते। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, इस चक्षु दर्शन के आवरण करने वाले कर्म को चक्षु दर्शनावरणीय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त शेष चार इंद्रियों के और मन के दर्शन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। इस अचक्षु दर्शन को जो आवरण करता है वह अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म है। अवधि के दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। उस अवधि दर्शन को जो आवरण करता है वह अवधि दर्शनावरणीय कर्म है। केवल यह नाम प्रतिपक्ष रहित का है। केवल दर्शन कहेंगे तो केवल किसको कहना, प्रतिपक्ष रहित को केवल कहते हैं। प्रतिपक्ष रहित जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। उस केवल दर्शन के आवरण करने वाले कर्म को केवल दर्शनावरणीय कहते हैं। बाह्य पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करना दर्शन ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं, किंतु वह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य ग्रहण के अस्तित्व के प्रति कोई विशेषता न होने से श्रुतज्ञान और मनपर्य ज्ञान इन दोनों को भी दर्शन के अस्तित्व का प्रसंग आता है। वो अस्तित्व का त्व डबल नहीं चाहिए, अस्तित्व का प्रसंग आता है। अतएव सामान्य ग्रहण के बिना विशेष के ग्रहण का अभाव होने से संसार अवस्था में ज्ञान और दर्शन की अक्रम अर्थात युगपत प्रवृत्ति का प्रसंग आता है। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक होती है, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करते नहीं जानते हैं। तो यदि हम ऐसा मानेंगे कि वस्तु के सामान्य को देखने वाला वो दर्शन और वस्तु को विशेष को देखने वाला ज्ञान, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानने वाला ज्ञान दर्शन एक साथ है, ऐसा प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। यानी वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला वो दर्शन ऐसा अर्थ नहीं होता, वो तो हमने भी बहुत बार देखा। तथा दर्शन की उपयुक्त परिभाषा मानने पर ज्ञान और दर्शन की संसार अवस्था में क्रमशः प्रवृत्ति भी नहीं बनती, क्योंकि सामान्य से रहित विशेष कोई वस्तु नहीं है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही होती है। यदि हम कहेंगे उसके सामान्य को जाने वाले वो दर्शन और विशेष को जाने वो ज्ञान, तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को हमने जाना तो दर्शन और ज्ञान ने एक साथ काम किया, ऐसा होगा। परंतु उपयोग एक साथ नहीं होता, वो क्रम से होता है, उपयोग की बात चल। और अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति होने का विरोध है। क्या कहते हैं, यदि हम ऐसा मानेंगे कि विशेष को जाने वही ज्ञान, तो अकेला विशेष वाली कोई वस्तु ही नहीं है, यानी अवस्तु हो गई, वो अकेला विशेष अवस्तु हो गई। और अवस्तु को जाने वो ज्ञान कैसे हो सकता है, लिखा ना, और अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी ज्ञान अवस्तु को नहीं जानता है, वस्तु को जानता है। हाँ, देखो वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक होती है। अकेला विशेष क्या है, सिर्फ विशेष, सिर्फ विशेष होता है, कहीं पर होता ही नहीं है। सामान्य के बिना विशेष किसका, ये तो सामान्य विशेष हम भेद करके समझने के लिए अभी उसमें सामान्य विशेष भेद बनाए, परंतु वस्तु ऐसा कोई भी वस्तु देखो वो सामान्य अंश और विशेष अंश दोनों की मिली जुली वो वस्तु है ना। नए की अपेक्षा हम उसमें भेद करके समझ सकते हैं, समझने समझाने के लिए तो उसमें अपेक्षा सहित भेद तो हमने किए, वस्तु में भेद नहीं हुआ, वस्तु तो अखंड एक हमेशा जैसी है वैसी रही, वस्तु नित्य और अनित्य अंश है उसमें, तो एक को गौण एक को मुख्य करके वो तो श्रुत ज्ञान तो उसमें मुख्य गौण करके जानेगा, परंतु वस्तु में क्या होगा, वस्तु में भी होता होगा कभी नित्य कभी अनित्य ऐसे चमकता रहता होगा हा? तो वस्तु तो अखंड है, तो अकेले अनित्य कहां पर वस्तु आपको मिलेगी, बस पर्याय है वहां, कोई त्रिकाली वगैरह कुछ नहीं है, बस पर्याय पर्याय है, ऐसी वस्तु ही नहीं होती। तो जो वस्तु ही नहीं है उसको ज्ञान किसको जानेगा, ज्ञान तो वस्तु को जानता है अवस्तु को नहीं जानता, ये बात बता रहे। ये सब न्यायों की भाषा है ना, तो ये अटपटी, अपना न्याय शास्त्र का अभ्यास यहाँ नहीं हुआ है। न्याय दीपिका एक है, परीक्षा मुख है, मैंने बताया होगा परीक्षा मुख, हाँ वो प्रमेय कलम कमल मार्तन वगैरह भी है वो बड़े बड़े, परीक्षा मुख बिल्कुल छोटी है जैसी सिद्धांत प्रवेश का उससे भी जैसी छोटी है, और उसमें ऐसे सूत्रों में सब बताया, ये उसकी न्याय की परिभाषाएं वगैरह उसमें है। पहले तो ये न्याय पर ही सारा जो चर्चाएं चलती थी ना अन्य मतियों के साथ भी, जिसको वाद या विवाद कहते थे, तो अन्य मतियों को हराया जाता था, बड़ी बड़ी सभाएं लगती थी, वो न्याय की भाषा चलती थी तब। अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति होने का विरोध है, यदि अवस्तु में ज्ञान की प्रवृत्ति मानी जाएगी तो ये तो ही है ना, प्रिंट नहीं हुआ है, तो ज्ञान के प्रमाणता नहीं माना जा सकती, क्योंकि वह वस्तु का अपरिच्छेदक है। क्या कहते हैं, यदि हमने अकेले विशेष ही है, होते हैं सामान्य कोई होती ही नहीं ऐसा कहेंगे तो वस्तु ही नहीं रहेगी, अवस्तु हो जाएगी, अवस्तु को ज्ञान नहीं जानता और यदि अवस्तु में भी ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यानी अवस्तु को भी ज्ञान जानता है ऐसा अगर कहेंगे तो ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, ज्ञान को हम प्रमाण नहीं कह सकते, ज्ञान को ही प्रमाण कहा है, परंतु जो अवस्तु को जानने वाले को भी हम अगर ज्ञान कहेंगे तो वो प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह वस्तु का अपरिच्छेद है, वस्तु को नहीं जानने वाला है, क्योंकि वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक है। केवल विशेष कोई वस्तु भी नहीं है, अकेले पर्याय कोई वस्तु नहीं है, इसलिए केवल विशेष है ने मात्र विशेष, सामान्य के बिना अकेला विशेष कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उसके अर्थ क्रिया की कर्तुता का अभाव है। अर्थ क्रिया कारित्व किसका गुण है, द्रव्य का सामान्य गुण है, सब में है वस्तु तो गुण है ना, वस्तुत्व गुण वस्तु के आधार से है कि पर्याय के आधार से, इसलिए क्या कहा, अकेली पर्याय ही होगी तो अर्थ क्रिया का कर्तुता का अभाव है, इसलिए सामान्य नाम आत्मा का है, क्योंकि वह सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है। यह आत्मा विषय समझ में आया, यहाँ ये आत्मा को विषय करने वाले की यहाँ ये बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आ गया है। हमने पहले बताया था कि जो सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, अभी ये क्लिप है, ये रबर है, ये पेंसिल है, ये जो कुछ पट्टी है, इसमें सामान्य विशेषात्मक उसमें से सामान्य जानने वाला ऐसा अर्थ नहीं, वो तो पहले बता दिया। अब क्या कहते हैं कि बिना सामान्य के कोई विशेष नहीं होता है, अभी इसमें जो सामान्य को जो जानने वाला है सबको, अभी इसमें कोई डिफरेंस मत करो, ऐसा सामान्य, हाँ तो सामान्य नाम आत्मा का है। जैसे हमने कहते ना स्कूल में हम क्या सीखते थे कि वो आत्मचरित्र लिखो, किसका, छाते का, तो उसमें भी आत्मा है क्या, है वो उसका स्व है, आत्मा है ना, स्व स्व बस, स्व को आत्मा कहते हैं। या जैसे अपना स्व है वैसे हर एक का अपना अपना स्व है, तो क्या कहते हैं, सामान्य नाम आत्मा का है क्योंकि वह यानी कौन, आत्मा सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है। इस प्रकार के सामान्य रूप आत्मा को विषय करने वाला उपयोग दर्शन है। ये अपने आत्मा को ऐसा नहीं कहा, इस प्रकार के सामान्य आत्मा को, ये आत्मा किसको कहा, जो सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है उसको यहाँ आत्मा कहा है। ये दर्शन के बारे में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा हमें लगता है ना, इसलिए वहाँ कुनकुंदाचार्य ने भी कहा, वो भी स्व पर उपयोग है, यानी स्व पर को देखने वाला वो दर्शन है और स्व पर को जानने वाला वो ज्ञान है। तो हमने बस सामान्य अवलोकन यानी सामान्य उसके वस्तु के सामान्य विशेषात्मक धर्मों को ही अलग कर दिया और उसमें से सामान्य को जानने वाला दर्शन, विशेष को जानने वाला ज्ञान ऐसा कह दिया। यदि ऐसा कहते हैं तो वो अवस्तु हो जाती है एक बात, तो इसलिए ये दर्शन संबंधी ये जो बहुत अच्छी है, ऐसी बात हमने पहले भाग में भी पढ़ी थी पर यहाँ तो अधिक स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है। अभी सकल पदार्थों में साधारण रूप से व्याप्त है, तो मैं तो सकल पदार्थों में सामान्य रूप से व्याप्त नहीं हूँ, वो जो कुछ सामान्य है उसका ग्रहण करने वाला, ऐसा यहाँ लेना। अब केवल क्या है, वो दर्शन की बात समझाने के लिए वो अटपटी होती है ना बहुत, अब के हाँ, मगर अकेली सत्ता को ग्रहण किया ऐसा भी मत लेना, उसमें समझाने के लिए अभी उसमें अभी शब्द तो ऐसे होते हैं ना, क्योंकि सत्ता कहेंगे आप कहेंगे हाँ वो एक ही गुण को ग्रहण करने वाला वो दर्शन, ऐसा उसमें से अर्थ नहीं कि निकालना फिर। हाँ सामान्य भी है पढ़ने से उसका स्वीकार है इतना ही, देखो केवल ज्ञान ही आगे पढ़ेंगे, केवल ज्ञान ही अपने आप का और अन्य पदार्थों का जानने वाला है, इस प्रकार मानकर कितने ही लोग केवल दर्शन के अभाव को कहते हैं। अभी केवल दर्शन के बारे में जो कुछ भ्रांति चलती है कि केवल ज्ञान अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है पूर्ण रूप से, तो वहाँ तो केवल दर्शन होता ही नहीं है, किंतु उनका यह कथन युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इसलिए सॉरी युक्ति संगत नहीं इसलिए केवल ज्ञान के स्व और पर की जानने वाली दो प्रकार की शक्तियों का अभाव है। यदि एक पर्याय के दूसरी पर्याय का सद्भाव माना जाएगा तो आने वाला अनवस्था दोष किसी के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता, इसलिए आत्मा ही स्व पर का जानने वाला है ऐसा निश्चय करना चाहिए। फिर इन्होंने फिर ऐसी उसमें स्व प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं और पर प्रतिभास को केवल ज्ञान कहते हैं। शंका, उक्त प्रकार की पूर्वक नहीं साथ साथ, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। स्व प्रतिभास को केवल दर्शन कहा उन्होंने और पर प्रतिभास को केवल ज्ञान कहा। अभी यहाँ फिर आत्म का अर्थ क्या अलग निकाला, 10 बज गए, हाँ कल देखेंगे हम इसको। जावाणी के ज्ञान